नमस्कार श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की दूसरी पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है मसीह की आज्ञा। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दूसरा यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इसके प्रस्तावना को देखा और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 1 के पद 4 से 6 का अध्ययन करेंगे। मेरे मित्रों, यूहन्ना अपना दूसरा पत्र एक ऐसी कलीसिया को लिखता है जो मसीही प्रेम से अभिभूत सब प्रचारकों और बाइबल शिक्षकों का अतिथि सत्कार करने में चूकती नहीं थी। कहने का तात्पर्य है कि सबको अपने प्यार में मोह लेती थी, उनका सत्कार करती थी। परंतु इस सेवा में एक संकट भी था कि कुछ प्रचारक ऐसे थे जो प्रभु यीशु को परमेश्वर नहीं मानते थे और प्रेरितों की आरंभिक शिक्षा को वे स्वीकार नहीं करते थे। वे अपने ही शिक्षाओं से उनके मसीही विश्वास को भरमाते थे। अतः यूहन्ना उन्हें सावधान करने के लिए यह पत्र लिखता है। वह कहता है कि उनका प्रेम मसीही परिवार तक ही सीमित रहे और उन्हें परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के सत्य पर अटल रहना है, क्योंकि यह सत्य उनमें सदा बना रहेगा। तो आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरा यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ें। लिखा हुआ है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। लिखा है तेरे कुछ बच्चों को, अर्थात कलीसिया के सदस्यों को, या हो सकता है उस कुलीन महिला की संतानों को सत्य पर चलते हुए पाया, अर्थात पिता परमेश्वर की आज्ञाओं पर आचरण करते हुए पाया। सत्य का आचरण करने वाला विश्वासियों का होना एक महान बात है। लिखा है उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी। मेरे मित्रों, यह आज्ञा है कि हम ज्योति में चलें जैसा वह अर्थात परमेश्वर ज्योति में है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को साधें, उसके अनुसार चलाएं, ताकि हम उसकी निकटता में बने रहें। यूहन्ना आगे कहता है, दूसरा यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूं और तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है आरंभ से, अर्थात प्रभु यीशु की सांसारिक सेवा के आरंभ से। प्रभु यीशु की शिक्षा थी यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 35 पद में प्रभु यीशु कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, इससे नहीं कि तुम रूढ़िवादी हो, परंतु इससे कि तुम आपस में प्रेम रखते हो। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु की शिक्षा यही थी कि हम आपस में प्रेम रखने के द्वारा उस परमेश्वर को प्रकट करें, इससे लोग जानेंगे कि हम उसके शिष्य हैं। यही कारण है कि आज मसीही विश्वासी सताए जाते हैं, फिर भी वे चुप रहते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है कि वे अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें। यह इसलिए नहीं कि वे निर्बल और कमजोर हैं, परंतु सत्य परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है, आपस में वे प्रेम रखते हैं। आगे कहता है, सत्य में चलना और आपस में प्रेम रखना। यहां फिर विश्वासियों में परस्पर प्रेम रखने की बात है। आज कलीसिया में इसी की आवश्यकता है, अन्यथा कलीसिया असंतुलित हो जाएगी। कलीसिया में प्रेम का दिखावा तो बहुत है, परंतु क्या आप सत्य पर चलते हैं? मैं आपसे व्यक्तिगत रीति से आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप सत्य पर चलते हैं? चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, अपने जीवन पर झांक करके देखें कि क्या आप सत्य पर चलते हैं। क्या आप वास्तव में परमेश्वर के वचन के ज्ञान में चल रहे हैं, या लोग चल रहे हैं इसलिए आप भी चल रहे हैं, लोग बोलते हैं इसलिए हम भी बोल रहे हैं? जी नहीं, आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान की सत्यता को समझना है, चाहे कोई भी आप क्यों ना हो। सब प्रेरितों की यही शिक्षा थी कि हम प्रेम का आचरण रखें और उसमें बने रहें। मेरे मित्रों, आज के युग में यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। आप रूढ़िवादी हैं तो यह एक बहुत अच्छी बात है, परंतु मैं आशा करता हूं कि आप प्रेम का आचरण करते हैं, क्योंकि प्रेम बिना आप रूढ़िवादी नहीं हो सकते। मसीही जीवन का गुरुत्वाकर्षण केंद्र सत्य एवं प्रेम है। अपनी पहली पत्री में यूहन्ना प्रेम को मुख्य स्थान देता है, परंतु वह यह भी कहता है कि यह प्रेम विश्वासियों में ही होना है। जो मसीही में हैं, उन्हीं में यह प्रेम बांटा जाए। वह कहता है, हे बालकों, मैं चाहता हूं कि तुम आपस में प्रेम रखो। मुझे यह विचार समझ में नहीं आता कि हम सबसे प्रेम रखें, क्योंकि यह तो संभव हो ही नहीं सकता। हम तो अभिप्राय जानते हैं कि एक दूसरे से प्रेम क्यों करना है। हम तो अप्रिय हैं, तो फिर हमें कोई प्रेम कैसे करे? हम प्रेम के योग्य भी नहीं हैं, परंतु परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जी हाँ, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वह विश्वासियों से कहता है कि हम संसार में सुसमाचार परमेश्वर के प्रेम को सुनाएं, उन्हें बताएं। इसी प्रकार हम अपनी चिंता एवं प्रेम संसार के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। हमें भटके हुए संसार में सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, और जब हम उन्हें सुसमाचार सुनाएंगे तब हमारे मन में उनके लिए प्रेम उत्पन्न होगा। वे जो हमारे बैरी हैं, वे भी हमसे प्रेम करेंगे। महत्वपूर्ण बात तो यह जानना है कि परमेश्वर प्रेम है, और उसके प्रेम ने हमें एक उद्धारकर्ता दिया है। परंतु सत्य भी एक अति महत्वपूर्ण अंश है जो प्रेम से बढ़कर नहीं है। यदि आप प्रेम को सत्य से बड़ा बना दें, तो सत्य की बलि चढ़ जाती है। अपनी दूसरी पत्री में यूहन्ना इसी बात को महत्व देता है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं, दूसरा यूहन्ना की पत्री, एक अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। अब प्रेम क्या है? उसकी आज्ञाएं मानना प्रेम है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना की बात को कहने की यह एक और विधि है। प्रभु यीशु की आज्ञाएं 10 आज्ञाओं से बढ़कर हैं। 10 आज्ञाएं प्रशासन एवं सभ्यता के लिए आधार हैं, परंतु एक विश्वासी को अधिक ऊंचे स्तर पर बुलाया गया है, जहां उसे आत्मा का फल उत्पन्न करना है, और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति तथा सहनशीलता आदि। यदि हम में ये बातें विद्यमान हैं तो हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। यदि हम में ये सब बातें नहीं हैं तो हम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं। बहुत साधारण सी बात है कि यदि हमारे अंदर में ये बातें नहीं पाई जाती है तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं हैं, क्योंकि यदि हम उसकी आज्ञाओं में चलेंगे तो ये सारी बातें हमारे जीवन में होंगी। इसलिए आगे वह कहता है, और प्रेम यह है, मैं फिर कहता हूं कि प्रेम श्रृंगार गृह में नहीं रसोई में होता है, प्रेम शयन कक्ष में नहीं कपड़े धोने में है। क्या पत्नी पति के कपड़े धोती है? क्या पति अपना वेतन घर में ले आता है? क्या वह अपने परिवार की सुधि लेता है? परिवार में प्रेम दर्शन ऐसे ही होता है। इसी प्रकार आप कलीसिया में प्रेम प्रकट करते हैं, दूसरों की चिंता करके, दूसरों की सहायता करके। आप जब तक किसी की सुधि न लें, उससे प्रेम न करें, तब तक आपके प्रेम करने का दावा बेकार है। जी हाँ, उससे प्रेम करने का दावा आप नहीं कर सकते, विशेष करके उसके आत्मिक कल्याण की सुधि लेकर। कई बार हम क्या करते हैं कि दूसरों को देख करके उनकी नुक्ताचीनी करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, उनकी बुराइयों को उजागर करते हैं, परंतु हम उन्हें चेतावनी नहीं देते और उनके उन गलतियों को उन्हें हम नहीं बताते, और इसके विपरीत हम उनसे बैर रखते हैं। कहने का अर्थ यही है कि जब हम उनके उन कमजोरियों को नहीं बताते हैं, उनकी सहायता नहीं करते हैं, तो निश्चय है कि आप उनसे प्रेम नहीं करते हैं। यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो निश्चय ही आप उनके पास जाकर उनकी गलतियों को आप बताएंगे, उन्हें सुधारेंगे, और यहां तक कि आप उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। इसी चीज की कमी हम अधिकतर देखते हैं। यहां पर यूहन्ना कहता है, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो निश्चय ही हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार भी चलेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। यह वास्तव में व्यवहारिक है, यही उद्धार का आचरण है। पौलुस और यूहन्ना के समय रोमी शासन था और राजा खूनी नीरो था। यूहन्ना ने एक के बाद एक राजा देखे जो विश्वासियों को सताते थे। उनमें सबसे पहला तीतुस था, जिसने सन 70 में यरूशलेम को ध्वंस किया था। रोमी राज्य अन्य जाति राज्य था जो अत्यधिक पाशविक था। विश्वासी उसी संसार में थे और प्रभु यीशु की आज्ञाओं पर चल रहे थे। वे सुसमाचार को जीवन से प्रकट कर रहे थे। आज इसी आचरण की आवश्यकता है। आप किस युग में हैं, किस काल में हैं, किस समय में हैं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप एक विश्वासी हैं तो आपके आचरण के द्वारा विश्वास को प्रकट करने की आवश्यकता है। उसके आज्ञाओं को पालन करने की आवश्यकता है। लिखा है, यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है। यूहन्ना के कहने का अर्थ है कि इस आज्ञा को आप अनदेखा ना करें, क्योंकि यह आरंभ में दी गई आज्ञा है। यह प्रभु यीशु की शिक्षा थी और हमने आरंभ ही से सुनी थी, अतः अब हम इसका संसार में प्रदर्शन करते हैं, लोगों को बताते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जीवन प्रभु यीशु की शिक्षा की अभिव्यक्ति है। यहां फिर वही बात आती है, एक ओर प्रेम है और दूसरी ओर सत्य है। अब यूहन्ना चेतावनी देता है, तो आइए हम पढ़ते हैं दूसरा यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 7 पद में। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। ध्यान दीजिए कि उस समय अर्थात यूहन्ना के समय में कुछ ऐसे लोग थे जो मसीही विरोधी थे, और वे यीशु के मसीह होने पर अर्थात शारीरिक रीति से मसीह को लोग स्वीकार नहीं करते थे। यूहन्ना अपनी पहली पत्री में कह चुका है कि मसीह के विरोध अर्थात विरोधी उठ खड़े हुए हैं, भरमाने वाली आत्माएं आ चुकी हैं। हम मसीही विरोधी की आत्मा को कैसे पहचाने, कैसे जाने कि यह मसीही विरोधी है? यूहन्ना इसका उत्तर देता है, जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, भरमाने वाला और मसीह विरोधी वही है। ध्यान दीजिए, जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर के इस पृथ्वी पर आया, तो वे लोग भरमाने वाले लोग हैं अर्थात मसीही विरोधी वही हैं, क्योंकि वे मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं। यहां तक कि कई लोग उसकी शिक्षाओं को भी तोड़ मोड़ करके लोगों को बताते हैं। अतः मसीही विरोधी की आत्मा वह है जो प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को स्वीकार नहीं करता है। उसने जो भी कहा, उसने हमारे उद्धार के निमित्त जो कुछ भी किया, क्रूस पर मरकर फिर सहदेह उठा, इसको आपको स्वीकार करना है। इसको स्वीकार नहीं करने वाला मसीह यीशु का विरोधी है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया। यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है कि भरमाने वाले लोग आएंगे, लेकिन इससे पूर्व सुसमाचार में वह कहता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में डेरा किया, और हमारे लोगों ने उसे नहीं स्वीकारा, और जो नहीं स्वीकार करते हैं यही मसीह के विरोध की आत्मा है। मसीह विरोधी वास्तव में 2 होने चाहिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 में 2 मनुष्यों का उल्लेख है जो मसीह के विरोधी होंगे। इनमें से एक राजनीति में महान अगुआ होगा और दूसरा एक धर्म गुरु होगा जो प्रभु यीशु की नकल करेगा और मनुष्यों को बहकाएगा, भरमाएगा कि उससे पहले पशु अर्थात राजनीति के अगुए की उपासना करें। वह भविष्य में आएगा, परंतु आज की परिस्थितियां उसके आगमन की तैयारी में है कि जब ये 2 मसीह विरोधी प्रकट हों तब उन्हें स्वीकार कर लें। वह राजनीति का अगुआ संसार को शांति की प्रतिज्ञा देगा और 3.5 साल तक बहुत ही उत्तम काम करेगा, परंतु वह शांति अस्थायी नहीं होगी, क्योंकि 3.5 वर्ष के बाद हर्मगिदोन का युद्ध आरंभ होगा और 3.5 वर्ष तक चलेगा। तब प्रभु यीशु आएगा और इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। उस समय एक ही वैश्विक धर्म होगा। आज निश्चय ही हम उस ओर अग्रसर हैं। उस धर्म में सब एक मत होंगे, परंतु वह वैश्विक धर्म किसी बात में विश्वास नहीं करेगा। आज कहा जाता है कि हमें विभाजित करने वाली बातों से हम मुक्ति पाएं, परंतु यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए तो हमें जोड़ने वाला कुछ भी नहीं रह जाएगा। एक बार एक छोटा लड़का अफ्रीका के जंगल में जा रहा था। उसके हाथ में चित्तीदार छतरी थी। मार्ग में उसे एक हाथी मिला। हाथी ने उससे पूछा, हे बालक, तू कहाँ जाता है? उस लड़के ने कहा, मैं कहीं जा रहा हूं। हाथी ने कहा, क्या मैं भी तेरे साथ चलूं? आज की कलीसियाई एकता ऐसी ही है। वे कहीं नहीं जा रहे हैं। उनके विश्वास का आधार कुछ नहीं है। इस कारण वे सब एकजुट हो सकते हैं। भरमाने वाला भावी नेता ऐसा ही होगा। एक राजनेता होगा और एक धर्मगुरु। यही मसीह का विरोधी होगा। मेरे मित्रों, आज कलीसिया किस ओर अग्रसर है? आप किस ओर अग्रसर हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन की सत्यता पर बढ़ रहे हैं या मसीह विरोधी की ओर बढ़ रहे हैं? यूहन्ना कहता है, बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। यूहन्ना के युग में तत्वज्ञानियों का संकट था। सुसमाचार जहां जहां गया है वहां वहां कोई ना कोई पंथ उभर कर आया है। वे सुसमाचार प्रचार से पूर्व कभी नहीं आए। इन तत्वज्ञानियों के भी अनेक पंथ थे। कहा जाता है कि एक बार यूहन्ना सार्वजनिक तालाब में नहा रहा था कि इफिसुस का सिरिनियुस भी वहां नहाने के लिए आया। उसे देख यूहन्ना तुरंत बाहर आ गया और प्रवेश द्वार से बाहर आने तक कपड़े नहीं पहने, क्योंकि उसे उस झूठे शिक्षक के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना था। यह सच हो और ना भी हो, परंतु यूहन्ना के विचार को स्पष्ट करता है। सिरिन्थियुस की शिक्षाओं के अनुसार प्रभु यीशु दो थे और ईश्वरत्व उसके बपतिस्मे पर उसमें समा गया तथा उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय उसे छोड़कर चला गया। तत्वज्ञानियों का एक और पंथ था जो कहता था कि प्रभु यीशु का शरीर नहीं था। उनका कहना था कि यीशु के शिष्यों को ऐसा प्रतीत होता था कि वे यीशु को देखते हैं, परंतु वह मात्र एक छाया था। यही कारण है कि यूहन्ना कहता है कि हमने उसे देखा, उसे सुना, हमने उसे ध्यान से देखा, हमने उसे छू कर देखा। हम जानते हैं कि हम क्या कहते हैं, वह वास्तव में एक मनुष्य था। इसी प्रकार यहूदियों के पंथ भी थे जिन्होंने मसीही शिक्षाओं को अपना लिया था। कुमरान की गुफाओं में रहने वाला समुदाय और मसादा समुदाय, जिसका पतन यरूशलेम के बाद 73 में हुआ, इस सब ने मसीह की शिक्षाओं को अपना लिया था। दोनों ही समुदायों ने प्रभु यीशु के प्रति धारणाओं को तोड़ मरोड़ करके दिया था। यूहन्ना जो कहना चाहता है और जो आज अति महत्वपूर्ण है, मेरे मित्रों, वह यह है कि आज संसार में अनेक भरमाने वाले आ गए हैं। मैं अपने प्रचार में कहता हूं कि मैं उस स्थान से आता हूं जहां मूर्ख बसते हैं, परंतु आप मुझे मूर्ख ना कहें, क्योंकि मैं उन झूठे शिक्षकों में से नहीं हूं। आप सच्चे मनुष्य को उसके विचारों से पहचान सकते हैं कि वे प्रभु यीशु के बारे में क्या हैं, क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं। जब तक वह प्रभु यीशु के विषय उचित विचार न रखे तब तक सब व्यर्थ है, वह एक झूठा शिक्षक है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप प्रभु यीशु के बारे में किस प्रकार का विचार रखते हैं। हो सकता है कि आपने सही सुसमाचार नहीं सुना है। सही सुसमाचार यही है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर कुंवारी मरियम से जन्मा, हमारे पापों के कारण वह क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर में ले लिया और हमारे बदले वह मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज भी वह जीवित है और 40वें दिन सबके देखते देखते वह स्वर्ग पर उठा लिया गया और यह यहूना जो लेखक है उस समय उनके साथ में था, उसने उसे देखा, सुना, छुआ और आज वह गवाही देता है। यही है सत्य सुसमाचार और यही कारण है कि सिर्फ यीशु ही हमें हमारे पापों से मुक्ति दे सकता है, क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उसके पास क्षमा करने का अधिकार है, पापों को क्षमा देने का अधिकार है। परंतु झूठी शिक्षा आज क्या कहती है? यही कहती है कि यीशु नहीं आया, जो यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था वह कोई दूसरा व्यक्ति था, जिसे कब्र में रखा गया था उसे किसी ने चुरा लिया, और इस प्रकार की बहुत सी झूठी बातें आप पाते हैं। आपको सावधान रहना है कि आप कौन से शिक्षा को प्राप्त किए हैं। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और आप एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए लेंगे ताकि आप परमेश्वर के निकटता में आ सकें। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
दीवाना था, दीवाना था, दीवाना था मैं, कितना दीवाना था, तू ही मेरी सांसों में था, मैं तुझसे बेगाना था, दीवाना था, दीवाना था, दीवाना था मैं, कितना दीवाना था, तू ही मेरी सांसों में था, मैं तुझसे बेगाना था, दीवाना था, दीवाना था, दीवाना था मैं।